بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے قلعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کو دھمکی. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، تو ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. ناظرین، قلعدم تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے پاکستان کے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. شیعہ رہنماؤں کو خاص طور پر دھمکی دی گئی ہے، اور کینیڈا سے آنے والے ڈاکٹر علامہ طاہر القادری کو بھی دھمکی ملی ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان، جنہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی حمایت کا اعلان کیا تھا اور بہت سے موقعوں پر طالبان کے خلاف آپریشن کی، البتہ ماضی میں مخالفت کی تھی اور تحفظات کا اظہار کیا تھا، انہیں بھی دھمکی دی گئی ہے. اگرچہ اس مرحلے پر عمران خان نے قبائلی علاقوں میں فوجی آپریشن کی حمایت کا اعلان کیا ہے، حکومت کو بھی دھمکی ملی ہے. نواز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو بھی دھمکی ملی ہے. غرض یہ کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، چند ایک مذہبی جماعتوں کو چھوڑ کر، سبھی جماعتوں کو طالبان کی طرف سے دھمکی مل رہی ہے، حکومت کو بھی دھمکی مل رہی ہے. تو ایک ایسے وقت جب طالبان سبھی جماعتوں کے ساتھ اکیلے محاذ کھول رہے ہیں اور سبھی کے ساتھ وہ لڑنے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. اس دوران حکومت پاکستان نے جو تحفظ پاکستان نے بل سینٹ اور قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، وہ منظور ہو گیا ہے. اگرچہ اس کی سبھی سیاسی جماعتوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے، لیکن عمران خان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اور جماعت اسلامی پاکستان نے اس کی شدید مخالفت کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طالبان اکیلے دم پر تمام سیاسی جماعتوں سے، حکومت سے، فوج سے کیسے موڑا لے سکتے ہیں، اور کس طرح سے ان کے ساتھ جنگ کے لیے اکیلے آمادہ ہو سکتے ہیں؟ کیا اکیلے ہیں یا ان کی پشت پر کوئی اور ہے؟ کیا پاکستان کے ارباب اختیار کو ابھی تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا ہے کہ طالبان کو فنڈنگ کہاں سے مل رہی ہے، ان کو حوصلہ کون دے رہا ہے، ان کو جرات، شہامت اور ہمت کون دے رہا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ ان کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت کون کر رہا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے اس فنڈنگ کو روکا جائے، اس حمایت کو روکا جائے، پھر طالبان کے خلاف کوئی بھی کارروائی مؤثر ہو سکتی ہے؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. مگر ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق قبائلی علاقوں میں طالبان کے خلاف جاری فوجی آپریشن کی حمایت کی وجہ سے پاکستان کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو دہشت گردانہ حملوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے. صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی جانب سے پولیس اور دیگر سیکورٹی اداروں کو لکھے گئے ایک خط میں کہا گیا ہے کہ طالبان کمانڈر ملا عمر خراسانی اور کمانڈر عبداللہ، وزیر اعظم نواز شریف اور تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لہٰذا مذکورہ دونوں رہنماؤں کی سیکیورٹی میں مزید اضافہ کر دیا جائے. پاکستان کے خفیہ اداروں نے اس سے پہلے پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری اور ان کی حمایت کرنے والے شیعہ علماء کرام کے خلاف بھی طالبان کے حملوں کا خدشہ ظاہر کیا تھا. کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے مہمند ایجنسی کے طالبان کی ٹیلی فونی کال ریکارڈ کی ہے، جس میں پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری اور شیعہ علماء کرام کے خلاف خود کش حملوں کی بات کی گئی ہے. اس دھمکی آمیز کال کے بعد علامہ طاہر القادری اور بعض شیعہ رہنماؤں کی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا گیا ہے. یہ دھمکی اس وقت سامنے آئی تھی جب گزشتہ دنوں عوامی تحریک کے سربراہ نے لاہور میں آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، جس میں شیعہ اور سنی علماء اور بعض سیاسی اور مذہبی نیز لسانی جماعتوں کے نمائندہ وفود شریک تھے. جب سے پاکستانی فوج نے ملک کے قبائلی علاقوں میں طالبان کے خلاف فوجی آپریشن شروع کیا ہے، ملک کے لیے سیکیورٹی خطرات میں بھی اضافہ ہوا ہے. البتہ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ اس نے آپریشن کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اور اس کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کیا ہے. فوجی آپریشن کے ساتھ ساتھ پاکستان بھر میں حساس مقامات اور اہم رہنماؤں کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ملک کے شہری علاقوں میں بھی طالبان اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے ممکنہ ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. وزیرستان میں فوجی آپریشن سے پہلے تک اس بارے میں پاکستانی سیاستدانوں اور عوامی حلقوں میں اختلاف رائے پایا جاتا تھا، لیکن فوجی کارروائی شروع ہوتے ہی اس میں خاصی کمی واقع ہوئی ہے. چند ایک سیاسی رہنماؤں کو چھوڑ کر جنہوں نے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے بارے میں بعض تحفظات کا اظہار کیا ہے، پاکستانی رائے عامہ مکمل طور سے اس کی حمایت کر رہی ہے. حال ہی میں کرائے جانے والے ایک سروے کے مطابق پاکستانیوں کی اکثریت دہشت گردی اور طالبان کی سرگرمیوں کے خلاف ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک سے دہشت گردوں کی بساط ہمیشہ کے لیے لپیٹ دی جائے. پاکستان کی اعلیٰ سول اور فوجی قیادت کی جانب سے سامنے آنے والے بیانات سے بھی اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ حکومت اور فوج دونوں ہی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عزم ہیں اور انہیں عوام کی جانب سے جس طرح کی اخلاقی حمایت کی ضرورت تھی وہ انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل سلیم باجوا آپریشن کے شروع میں ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے خلاف یہ آپریشن ہماری بقا کی جنگ ہے اور ہم نے دہشت گردی کے خاتمے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ آپریشن کے نتیجے میں 600,000 سے زیادہ افراد اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور بھی ہوئے ہیں اور وہ قرب و جوار کے شہروں میں قائم عارضی کیمپوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان 600,000 لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولتوں کی فراہمی بھی ایک اہم مسئلہ ہے اور ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان تنہ تنہا اس خطی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توانائی نہیں رکھتی، لہذا تمام سیاسی اور سماجی تنظیموں اور اداروں کو اس سلسلے میں مقدور بھر کوششیں کرنا ہوں گی۔ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری طالبان مخالف ضرور ہیں لیکن وہ اس وقت حکومت مخالف ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جسے انہوں نے کرپشن مخالف انقلاب کا نام دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ موجودہ کرپٹ حکومت مہینوں کی نہیں چند ہفتوں کی مہمان ہے اور وہ عوام سے کیے گئے انقلاب کے وعدے کو جلد پورا کریں گے۔ اس بات سے قطع نظر کہ علامہ طاہر القادری کے انقلاب کے وعدے میں کتنا زور اور سیاسی عزم ہے، پاکستان میں عام تاثر یہی ہے کہ موجودہ صورتحال میں جب حکومت اور فوج دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تندہی کے ساتھ کام کر رہی ہے، ملک کسی بھی طرح کی سیاسی مہازارائی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔
جناب چلتے ہیں سیدھے کراچی اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں سینئر تازہ نگار عرفان علی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ عرفان علی صاحب میری آواز سن رہے ہیں آپ؟
السلام علیکم علی عباس صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟
جی شکریہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ طالبان نے تو تقریباً سبھی سیاسی جماعتوں کو دھمکی دے ڈالی ہے اور حکومت کو جو اس نے دھمکی دی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے شمالی وزیرستان میں آپریشن کا اعلان کیا، آپریشن کا اس نے حکم دیا، لیکن شیعہ رہنماؤں کو اس نے حملہ یا ٹارگیٹ بنانے کا جو اعلان کیا ہے، جو دھمکی دی ہے، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟
دیکھیے، یہ جو جنگ ہے تکفیری جو مائنڈ سیٹ ہے اس کی وجہ سے ہے، اور حکومت کے خلاف جو اس کی دھمکی ہے وہ ایک گیدڑ بھبکی ہے، یعنی کہ وہ جو ہے اس کو آپ انگریزی کے مقولے بارکنگ ڈاگ سیلڈم بائٹ میں لے سکتے ہیں کہ بھونکتے ہوئے کتے کاٹا نہیں کرتے۔ تو حکومت کے ساتھ جو ان کی جو دھمکی کا جو موضوع بنتا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سے بارگیننگ کی جائے، اور حکومت نے پہلے بھی یہ کیا ہے کہ ستمبر کے مہینے میں 2 دہشت گردوں کو پھانسی کی سزا ہونی تھی جس پہ عمل ہونا تھا ستمبر کے مہینے میں پچھلے سال، تو وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ پنجابی طالبان اور دیگر طالبان گروپوں کی طرف سے دھمکی آئی کہ اگر جو ان 2 کو پھانسی کی سزا پر عمل ہوا تو ہم مسلم لیگ نواز کے جو کہ حکمران جماعت پنجاب اور وفاق میں ان کے 2 بڑے اہم جو شخصیات ہیں ان کو قتل کر دیں گے۔ تو ان 2 بڑی شخصیات جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی جو 2 شخصیات ہیں مسلم لیگ نواز کے پاس وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب ہیں جو کہ وزیر اعظم ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ تو جب ان کو وہ دھمکی ملی اس کے بعد جو ہے پھر خبر آئی، آپ اگر جو ہے اخبارات میں بھی شائع ہوئی کہ حکومت نے غالباً رانا ثناء اللہ کے ذریعے یا جو ہے ڈائریکٹ کسی اور ذریعے سے، لیکن دوسری طرف جو پارٹی تھی وہ یہ تھی کالا دم سپاہی صاحبہ، ان کے ذریعے سے پنجابی طالبان سے مذاکرات کر کے اپنی جان بخشی کرائی اور ان کو کہہ دیا کہ ہم ان کو پھانسی نہیں دیں گے، اور ابھی تک وہ پھانسی کی سزا نہیں دی گئی ہے۔ دوسری بات، جہاں تک جو آپ نے یہ جو شیعہ رہنما والی بات کہی ہے تو ہم یہ شروع سے رونا روتے آئے ہیں کہ جب بھی دہشت گرد شروع کرتے ہیں کسی کاروائی کو تو وہ شیعوں سے ہی شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ مشرق وسطی میں ابھی دیکھیں کہ جو یہ نئی سیاست شروع ہوئی انقلاب اسلامی کے بعد، تو صدام نے سب سے پہلے جنگ کس ملک پر مسلط کی تھی؟ ایران پر کی تھی، شیعہ ایران پر، لیکن بعد میں جو ہے وہ اپنے ہی سرپرست اور جو ہے اتحادی کویت پر بھی چڑھ دوڑا تھا، اور امریکہ کو بھی جو آنکھیں دکھانا اس نے شروع کی تھی، وہی نورا کشتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، لیکن بہرحال ایک ڈرامہ ویسا بھی رچایا گیا تھا۔ تو یہ سیم سچویشن آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور جو شیعہ رہنما ہیں وہ شروع سے شیعہ سنی بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں اور اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں شیعوں نے اٹھا رکھا ہے، और ये जो तकफीरी दहशतगर्द हैं जो जिन्हें हम पाकिस्तान की इस्तेलाह में यजीदी कहते हैं, मैं यजीदी इसलिए कह रहा हूं कि जो है ये यजीद इब्न मुआविया के मुनासबत से कह रहा हूं कि ये बनू उमैया की उस आर्मी से ताल्लुक रखते हैं, इनकी रेजिमेंट बटालियन अलग अलग हो सकती हैं, कहीं ये दाइश का नाम ले लेते हैं, कहीं जुबतुन नुसरा बन जाते हैं, कहीं फिर सीरियन आर्मी बन जाते हैं, कहीं लश्कर जंगवी, कहीं तालिबान, कहीं अलकायदा। तो मतलब उस नाम पे धोखा ना खाए आदमी, वो समझ ले कि ये उस यजीद की, मैं यजीद इसलिए कह रहा हूं कि इराक के अंदर जो यजीद हैं वो एक बुजुर्ग की मजार है, वहां पे यजीदी एक फिरका है, उससे मुराद वो ना ली जाए। पाकिस्तान हिंदुस्तान में यजीदी ज्यादा मुनासिब इस्तला है तकफीरियों की नस्बत। तकफीरी जो है वो अरब दुनिया में ज्यादा मशहूर, या जो है आपके यहाँ ईरान में ज्यादा मशहूर इस्तला हो चुकी है। और एक और इस्तला है नासबी या खवारिज। तो जो शियों की मैं बात कर रहा था कि शिया जो है वो इस दौर में वो इस्लाम के, जो इस्लाम का इज्तमाही पैगाम है, सियासी पैगाम है, जिसे ये लोग कहते हैं कि जो है खिलाफत राशिदा के दौर में जो उम्मत इस्लामी की क़यादत हुआ करती थी, उस दौर में जो है फलस्तीन आजाद हुआ था, और इस तरीके की जो बातें की जाती हैं, तो आज उन जो मस्बत कामों का जो बेड़ा है वो शिया क़यादत ने उठा रखा है। तो इसलिए एक तीर से दो शिकार हो रहा है। हम ये कहते हैं कि ये सहयूनियत ज़दा अमरीका इसकी क्यादत कर रहा है, और उसमें जो सहयूनियत के खुफिया इत्तेहादी जो अरब ममालिक हैं उसकी एक प्रॉक्सी वार है, जो जिसको हम उर्दू में या जो है फारसी में नियाबती जंग कहते हैं। तो ये वो नियाबती जंग है जिसकी वजह से शिया जो है इसमें फ्रंट लाइन पर जो है इस्लाम के दिफा में हर मोर्चे पे मौजूद है, इस वजह से शिया खास तौर पर निशाना बने हुए हैं इसका। और ये 9/11 से पहले ही शुरू हो चुकी थी ये जंग, 9/11 के बाद तो अमेरिका इस जंग में जो है अपने बहाने से आया है, और उसके बहाने, वो जो बहानेबाजी भी उसने की है, तो उसमें इस जंग को हाईजेक किया है उसने अपने मफाद में। उसने ये कोशिश की है कि मशरिक वुस्ता का नक्शा इस तरह तब्दील कर दिया जाए, या इस पूरी दुनिया या इस्लाम का नक्शा इस तरह तकसीम कर दिया जाए, उसकी सूरत हाल यूं बना दी जाए कि छोटे छोटे मुनकसिम आपस में खाना जंगी का शिकार जो है मुसलमान हो, और इसराइल के लिए कोई खतरा ना हो, और आलम इस्लाम पर अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी और कठपुतली हुक्मरान जो है हुकूमत करते रहे। तो इस राह में सबसे बड़ी रुकावट इनकलाब इस्लामी के बाद ये साबित हुआ कि शिया मुसलमान है, इसलिए जो है ये शिया क़यादत जो है पूरी दुनिया में, खासतौर पर पाकिस्तान में, चूंकि जो है अल्लामा आरिफ हुसैनी के दौर से ये इमाम खुमैनी से के इनकलाब से इत्तेहाद किया शियों ने, और अलग ऐलान जो है वो सारी चीजें जो ईरान के इनकलाब से सादिर हुई थी, आपने देखा कि पाकिस्तान में फौरन यौमुल कुद्स मनाना शुरू हुआ, और जो आशूर के जुलूस थे या जो मुहर्रम आजादारी के जुलूस थे उसमें मरकबर अमरीका मरकबर इसराइल का नारा गूंजा, जो उससे पहले नहीं गूंजता था। यानी कि पूरी फरहंग ईरानी, ईरान के इस्लामी इनकलाब के बाद जो है शिया इनकलाब में जो है वो आइमा मासूमीन के दौर की सीरत झलकने लगी कि हम आलम इस्तकबार और इस्तस्मार और इस्तेमार को जो है चैलेंज करने लगे। तो उस वजह से जो है खास तौर पर शिया क़यादत को भी निशाना बनाया गया है। और
बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर होऊंगा।
सुन्नी मोतदिल उलमा हैं, खासतौर पर जैसे कि ताहिरुल कादरी साहब हैं, या साहबजादा हामिद रजा हैं, या दीगर सुन्नी बरेलवी हजरात हैं, और हत्ता के जो है, मतलब ये तो मैं वो बात बता रहा हूँ कि जो अलल एलान सुन्नी तादी जो ना भी हो, यानी कि जिनके सुन्नी शिया इत्तेहाद है तो सही, लेकिन इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से इन बरेलवियों से, जैसे कि मुफ्ती हसन जान देवबंदी साहब थे, उन्होंने भी एक फतवा तालिबान के खिलाफ दिया था, तो उसकी वजह से उनको भी शहीद किया गया था, मुफ्ती सरफराज नईमी साहब को भी शहीद किया गया था। तो यहाँ शियों के साथ साथ जो है उनके इत्तेहादी, उनके हमफिकर सुन्नी उलमा भी हदफ हैं।
बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं इस्लामाबाद से आइनी उमूर के माहिर डॉक्टर चौधरी अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
जी, जी बड़ा अच्छा तजिया फरमाया है हमारे भाई ने।
जी चौधरी साहब, मैं आपसे, चूंकि आप आइनी उमूर के माहिर हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो तहफ्फुज पाकिस्तान बिल मंजूर हुआ है, दहशत गर्दी पर काबू पाने में कितना मौसर साबित हो सकता है आपके ख्याल में?
ये तहफ्फुज पाकिस्तान जो बिल है इसका मकसद भी यही है कि दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल किया जाए। ये इसमें अगरचे सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत ज्यादा अख्तियार दिए गए हैं, लेकिन ये बड़ी मजबूरी थी, और ये मजबूरन हमें इसलिए ये करना पड़ा है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये अख्तियार न दिए जाए तो फिर फौर फैसला नहीं हो सकता दहशत गर्दी को खत्म करने का।
जी।
तो इसमें मकसद जो है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है इस बिल का, वो यही है कि दहशत गर्दी से छुटकारा हासिल किया जाए।
जी
हेलो
जी 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 फरमाइए
सुन रहे हैं ना
जी 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 जी
पुलिस ऑफिसर को और पुलिस की डेफिनेशन में तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज आती हैं
जी
उसमें रेंजर भी आते हैं उसमें फ्रंटियर फोर्स भी आती है उसमें मलेशिया भी आता है उसमें बॉर्डर फोर्सेज भी आती हैं उसमें आर्म फोर्सेज भी आती है उसमें तमाम फोर्सेज जो है जो 15 स्केल का एक ऑफिसर होगा उसको अख्तियार है वो फायर ओपन करवाने का हुक्म दे दे लेकिन उसके सर्कमस्टांसेस वादे किए गए हैं कि ऐसे हालात में वो ऑर्डर दे सकते हैं वो हालात उसके उसमें दिल में रखे गए हैं तो मकसद अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि वो पूरे आयरन है इसको कंट्रोल किया जाए
जी।
और दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए ताकि उम्मा मुस्लिम में मुसलमानों में बगैर किसी तफरीक के बिला खौफ खतर और बगैर किसी फिरकावारियत के हमारे जो भाई शिया है वो भी हमारे भाई हैं सुन्नी भी भाई हैं हम जो देवबंदी हैं उनको भी भाई समझते हैं जो अच्छे लोग हैं और जितने भी हमारे पुरमन लोग हैं वो तमाम मुस्लिम भाई हैं और हम कहते हैं कि सिर्फ जुग्राफियाई हदूद की हद तक नहीं है हम तो अलामा इकबाल के उस तसव्वुर के कायल हैं जिसमें उसने कहा है कि एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर
जी
समझ गए ना जी
जी जी
तो हम किसी जुग्राफियाई हदूद के पाबंद नहीं है हम तो इंसानी और इस्लाम के तसव्वुर के कायल हैं और इस्लाम की जो असल मंशा है बनी नौ इंसान की खिदमत है
जी
और उस पे यकीन रखते हैं
जी
और उनकी हिफाजत जो है वो अपना फर्ज समझते हैं अगर किसी हमारे भाई हरान में रहने वाले को तकलीफ हो तो हम ये महसूस करते हैं कि ये हमें तकलीफ हो रही है
जी चौधरी साहब मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में आप टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहिएगा जी मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में चलते हैं लंदन स्टोर जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर तजवी नगार और दानिश्वर मंजूर रिजवी साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह
जी मंजूर रिजवी साहब कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एक तवील फहरिस्त जो है वो तैयार कर ली है हमलों की कि हम फलां 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 सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को निशाना बनाएंगे अकेले तालिबान मुल्क की बेशतर सियासी जमातों उनके रहनुमाओं को निशाना बनाएंगे कैसे कौन है उनकी पुश्त पर
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्जी है कि ये जो धमकी है कोई नई भी नहीं है और उसमें इनको धमकियों की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि चूँकि ऑपरेशन शुरू हो चुका है तो लोगों की तवज्जो हटाने के लिए खौफ ज़्यादा लोगों को करने के लिए और शहरियों को सरासीमा करने के लिए कि देखिए ये हो जाएगा वो हो जाएगा हालांकि ये धमकी तो आज दे रहे हैं और इनकी कार्रवाइयाँ इनकी दहशतगर्दियाँ इनके कत्लो गारत के मंसूबे इनके कत्लो गारत के जो भी इन्होंने की कर रखी है वो तो अरसे दराज से कर रहे हैं ये बात कोई नई नहीं है पाकिस्तानियों के लिए कि ये लोग क्या करना चाहते हैं और इनके मकासद क्या हैं दरअसल एक और बात की तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि ये सिर्फ तालिबान जो हैं ये उनकी तरफ से जो धमकी आई है मखसूस वो गिरोह नहीं है जो तलवार उठाए हुए हैं और जो नॉर्थ वजीरस्तान में या सवात में या फाटा के इलाकों में बैठे हुए हैं बल्कि ये तालिबान की एक ज़हनियत जो है ये हर जगह फैल चुकी है और ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह पनप चुके हैं हर जगह उनके रुख मुख्तलिफ हैं आप कभी उनको तालिबान का नाम दे दीजिए या किसी और नाम दे दीजिए आपको याद होगा कि जब इनकी बुनियाद रखी गई तालिबान का नाम अपनाने से पहले या अलकायदा का नाम अपनाने से पहले भी यही लोग थे यही तकफीरी जमातों वाले थे जो अपने सिवा सबको मुर्तद और गैर मुस्लिम समझते हैं तो दरअसल ये पाकिस्तान के कई ऐसे मदारस हैं जो मदर तालीम इस्लाम के नाम पर फिकाही तालीम के नाम पर और चीज़ों के नाम पर एग्जैक्टली बिल्कुल वही बातें सिखाते हैं पढ़ाते हैं बच्चों को तैयार करते हैं कि जो ये तालिबान जिन्होंने नाम अपनाया हुआ है तालिबान का वो काम करते हैं वही लोग वही कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि नाम की वजह से होता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने बज़ाहिर हथियार उठाकर फौजों पर भी हमला किया, ये फ़र्क है उनके अंदर। वरना आपको याद होगा ये 25-30 बरस से दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है, जितने उलमा को कत्ल किया गया, शी हजरात को भी कत्ल किया गया, देवबंदी हजरात को कत्ल किया गया, बरेलवी हजरात को कत्ल किया गया। तो दरअसल वो ये समझते हैं कि हर वो आदमी जो उनसे मुत्तफिक नहीं है वो गैर मुस्लिम है। तो ये धमकी जो है, इस धमकी का मतलब सिर्फ महज सरासमगी और खौफ और हिरास पैदा करना मकसूद है, वरना यही लोग, ये ज़हनियत जो है हर जगह कारफरमा है। और ये कभी मसलक के नाम पर, कभी फ़िकह के इख्तलाफ के नाम पर, और कभी और दूसरों चीज़ों के नाम पर, मतलब ये कहने की बिना पर कि हम शिर्क को ख़त्म कर देंगे, बिदात को ख़त्म करेंगे और रसूम जाहलिया को ख़त्म करेंगे। दरअसल ये सब इनके बहाने हैं, इनका मकसद कतई तौर पर ये नहीं है कि खालिस और मुखलिस और तरीक़े से और इखलास दीन के साथ लोगों को उस तरफ बुलाया जाए, बल्कि वो ये समझते हैं कि जो उनका नुक्ता नज़र है, सिर्फ नुक्ता नज़र ही की बात नहीं है बल्कि वो ये चाहते हैं कि अमली तौर पर भी लोग उनका साथ दें
जी।
और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के हुक्मरान तबके के अंदर भी कुछ लोग, आपको पता है कि जो लश्कर जंगवी के कई हजरात थे वो MNA बन चुके हैं। अब ये अलग बात है कि उन्होंने तौबा कर रखी है या नहीं कर रखी, या वो इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं या नहीं छोड़ चुके। और इसी तरह कई मुक्तदर हजरात अब तक जो मौजूद हैं, खुल्लम खुल्ला खा इसका नाम पहले लश्कर जंगवी आप कह लें या कोई और नाम इसको दे दें, लेकिन खुल्लम खुल्ला वो उनके साथी हैं, उनकी मजलिसों में जाते हैं। जब इलेक्शन हुए तो उनके बैनर उन लोगों ने उठाए हुए थे, उन लोगों को वो अपने साथ कारों में बिठाकर, जीपों में बिठाकर वो इलेक्शन का कंपेन करते रहे। सब लोगों को इस बात का इल्म है। तो दरअसल ये धमकी जो है, ये धमकी इस बिना पर दी जा रही है कि हम सिर्फ वजीरस्तान के अंदर नहीं बैठे हुए हैं, हम ये नहीं है कि हम सिर्फ फाटा के अंदर बैठे हुए हैं या अफगानिस्तान की सरहदों के साथ बैठे हुए हैं। और हकीकत भी यही है कि जब ये हमले होते हैं, इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं, ये थोड़ा है कि वहीं से उठकर आते हैं और सिर्फ वही लोग जो वजीरस्तान के अंदर हैं वही आकर ये हमले करते हैं। भाई हर जगह, हर शहर के अंदर, बल्कि कई कस्बों के अंदर, देहातों के अंदर ये लोग छुपे हुए मौजूद हैं।
बहुत शुक्रिया रिजी साहब, बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँगा आपकी खिदमत में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है मेहमानों से, मगर यहाँ पर एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। जी नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं आप सभी लोगों को। चलते हैं इरफान अली साहब की खिदमत में। इरफान अली साहब, एक बहुत सामने का और सादा सा सवाल लेकिन यकीनन अहम होगा और आप सभी लोगों के जहनों में ये सवाल है, एक कि जैसा कि भी मंजूर रिजी साहब कह रहे थे कि ये सिर्फ शुमाली वज़ीरिस्तान या जुनूबी वज़ीरिस्तान या फाटा के इलाके में नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी, हत्ता छोटे छोटे कस्बों देहातों में भी फैल चुके हैं, तो क्या अरबाब अख्तियार, हुकाम, सियासी जमातों, एजेंसियों को इस बात का इल्म अभी तक नहीं हो सका है कि इन्हें कौन फंडिंग कर रहा है, इन्हें कौन असलहा दे रहा है? जाहिर है कि लाखों और करोड़ों रुपए और डॉलर में इनकी मदद हो रही है, तो ये सब आ कहाँ से रहा है? और अगर उनको इल्म है तो उस रास्ते को और उस रसद को काटा और रोका क्यों नहीं जाता?
बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जो मैं आपको बता दूं कि आज भी जो है कराची शहर में एक जो है खुदकुश हमला आवर जो है वो रास्ते में फट गया और कहीं जाने से पहले खुद भी मरा और जो है एक और आदमी भी शहीद हुआ उसके साथ और कुछ लोग जख्मी हुए। सदर का इलाका है कराची का जहां पर ये हुआ, और ये भी जो एक मस्जिद के सामने ही हुआ है, यानी कि जो है अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा नुकसान होने से बच गया। फिर जैसे कि आपने ये बात कही तो मैं कराची शहर के हवाले से कहूँ आपको कि कुंवारी कॉलोनी है, भंगो पीर है, MRP कॉलोनी है, यहाँ पर औरंगी टाउन की तरफ है हमारे जो जिला गरबी के इलाके हैं। फिर कराची शहर में जो आपने ये मंजर देखा कुछ दिनों पहले कराची एयरपोर्ट पर हमला हुआ, तो कराची जैसे इंटरनेशनल शहर में के जहाँ जो है जहाँ आप जो है दाखिली रस्तों पर चेकिंग कर सकते हैं, नाकाबंदी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ के जो दाखिली पॉइंट्स हैं वो सबको मालूम है कि जो है इंटीरियर सिंध से, यानी कि अंदरून सूबे से, अंदरून पाकिस्तान से, अंदरून यानी कि बलूचिस्तान की तरफ से आने वाले और समंदरी रास्तों से आने वाले, यानी कि यहाँ तो आपको बहुत इजी पड़ता है कि ये वो शहर नहीं है कि आप जो है हर तरफ से घुस जाएं, इस तरीके से नहीं है। यहाँ पर भी अगर जो है गवर्नमेंट या स्टेट एजेंसीज नाकाम होती हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है। दूसरी बात जो है, बाज जो चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें हुकूमत जो है या जो हमारी रियासती एजेंसियां हैं वो मजबूर होती हैं। अगर फर्ज कर लें कि सऊदी अरब अगर किसी ग्रुप को जो है फंडिंग कर रहा है, तो हमारी जो स्टेट की पॉलिसी ये नहीं होगी कि जो है उसको मंजर आम पर लाया जाए, फिर वो जो है किसी और तरीके से डील होगी वो चीज। इसी तरीके से अमेरिका है और जो है दीगर बाज ममालिक हैं कि अगर उनकी कोई जो है चीजें पकड़ी जाएंगी तो वो, ये अलग बात है कोई मुहिब वतन एलिमेंट्स हो हमारे रियासती इदारों में जो मीडिया के जरिए उसको लीक कर दें, जैसा कि ये अभी आपने देखा FBI का जो एक एजेंट पकड़ा गया था अभी कराची शहर के अंदर, और फिर जो है उसको अदालत में भी पेश कर दिया गया था और वो असलहे के साथ था, लेकिन बाद में हुआ क्या, बाद में अमेरिका आ गया दरमियान में और अमेरिका ने जो है अपनी कहा कि जो है इसको इम्यूनिटी दिला दी डिप्लोमेटिक जो है वो इंटरवेंशन के जरिए। तो मतलब जो है यहाँ जो है जिस किस्म का कानून है और जिस किस्म की जो हमारी बर्दाश्त है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो मतलब हमारा जो वो प्रेशर सहने का जो कैपेबिलिटी या कैपेसिटी है वो बहुत कम है। हम अमेरिका की या जो है सऊदी अरब की मुखासमत या नाराजगी मोल नहीं ले सकते। अभी अगर $1.5 अरब उसने सऊदी अरब ने दिए हैं तो यकीनन उसका कोई मफाद है। अगर अमेरिका हमें IMF से कर्जे दिलवा रहा है या वर्ल्ड बैंक से कुछ दे रहा है या USAID के जरिए कुछ उसने जो है फंडिंग की हुई है या जो है कोलिशन सपोर्ट फंड में जो है पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि जिसके जरिए वो प्रेशराइज करता है, ये उसके टूल है फॉरेन पॉलिसी के जो है वो कैरेट्स के जरिए भी जो है डील करता है और उसके साथ साथ स्टिक यानी थ्रेट्स भी देता है यूज ऑफ फोर्स की। तो उस वजह से जो है आप ये देखेंगे कि बहुत सारी चीजें मंजरे आम पे नहीं आ पाती। तो ये एक मजबूरी है कि हमारी स्टेट जो है इस काबिल नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस आउटसाइड प्रेशर को सह सके। और फिर जब जो है वो जब इंटरनेशनल कोई पॉलिसी बनती है तो उसमें उसका रोल होता है। अभी मैं आपको एक और चीज बता दूं कि दाइश जिसका आप तस्करा कर रहे थे या जो है मीडिया में जिसका बहुत ज्यादा चर्चा है कि वो शाम और इराक की तरफ है, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है आज ही जो है ट्विटर पे मैंने पढ़ी एक खबर, एक ट्वीट अकाउंट बनाया इन्हीं का जो दाइश का, उसका नाम उन्होंने रखा है, वो उर्दू सर्विस है मीडिया की, और उसका नाम रखा गया है अंसारुद्दौलतुल इस्लामिया फिल पाकिस्तान, यानी कि वो जो दाइश है उसकी पाकिस्तान में सपोर्ट और वो जो नाम नेहाद खिलाफत है उसकी सपोर्ट। तो यानी कि सोशल मीडिया पर ये अकाउंट है और पाकिस्तान में इसकी जो है एक प्रोपेगेंडा जो तबलीगती जंग है वो चल रही है और वो मैंने उसमें पढ़ा है। आप भी उसको जाके ट्विटर पे चेक कर ले, उसमें आपको मालूम होगा कि जो है सऊदी अरब की भी खबर है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से 30,000 फौजी मांग लिए हैं। कहां दाइश, कहां अंसारुद्दौलतुल इस्लामिया फिल पाकिस्तान, और कहां सऊदी अरब और पाकिस्तान का डिफेंस कोऑपरेशन का स्टेटमेंट, जिसमें जो है नवाज शरीफ का ये बयान भी है कि जो है इस नाजुक मरहले में या जो चैलेंजेस जो करंट चैलेंजेस है उसमें जो है दोनों मुल्कों यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसका इस तंजीम से क्या ताल्लुक है। तो ये जो चीजें हैं ये समझने की है और इसके बाद जो है चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ये आप अगर इराक को देख लेंगे तो मतलब वहां पे भी आपको समझ में आ जाएगी, अलमवार की जो सरहद है उर्दन से है, उर्दन में अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस है और अमेरिकी कंजर्वेटिव वेबसाइट वर्ल्ड नेट डेली ये कहती है। अमेरिका का जो है कांग्रेसमैन है रिपब्लिकन रेंड पॉल, वो भी कहता है कि सूरत हाल इस तरफ किस तरह पहुंची, इसमें अमेरिका खुद देखेगा दाइश को सीरिया में सपोर्ट किसने किया, उनकी अपनी स्पेशल फोर्सेज है। फिर ये अलमवार से जो जो सऊदी अरब का शुमाली सरहदी सूबा है पूरा, ये नजफ तक जा रहा है, यानी कि जो ये पूरी जो सरहदी पट्टी है अलमवार सूबे पे भी लगती है, उसी के साथ जो है थोड़ा सा आगे जाके शाम और सऊदी अरब के दरमियान में उर्दन की पट्टी है, तो ये जो है इस तरफ से और शाम के उस तरफ तुर्की की पट्टी है। तो जो पाकिस्तान के भी जो लोग हैं वो उस तरफ पहुंचे हुए हैं, सीरिया में भी जो है पाकिस्तान के कुछ लोग हैं, तादाद उनकी कम है, जो सीरियन कहते हैं कि पाकिस्तान के भी जो है ये लोग जो है वहां पहुंचे हुए, तालिबान टाइप के जो लोग हैं ये वहां पहुंचे हुए। अब इराक में भी जैसे कि ये ट्विटर अकाउंट आया है, इराक में भी इनकी मौजूदगी है और ये इसको क्लेम करते हैं और उसमें सऊदी अरब की भी जो है इन्होंने इन्वॉल्वमेंट खुद शो की है। फिर सऊदी अरब का जो है अगर आप अमरीकियों को पढ़ें, और वाशिंगटन पोस्ट में डेविड इग्नाशियस की अब जो ताजा तरीन है उसमें जो है एक यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा के प्रोफेसर का भी हवाला दिया है, दूसरे का भी हवाला दिया है कि इराक के अंदर जो है यानी कि जो है वो इस तरीके से मसला हल किया जाए कि जो है वो सऊदी अरब के जरिए जो है सुन्नी कबाइल जो सऊदी अरब में है उसके जो मतलब जो ये कबाइल होते हैं अरब के, आपको मालूम है कि ये तो पूरे दुनिया में मतलब जितने भी अरब ममालिक हैं सब में फैले हुए, जैसे कि शमर कबीला है और जो है आपका तमीम कबीला है, तो ये वहां पर भी फैला हुआ है। तो ये एक ही जो है कनेक्शन जा रहा होता है ना, वो जो है कबायली जो सुन्नी का नाम लेकर जो है सऊदी अरब की एक जो है मदाखलत जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है कि वो राय दी गई है। अब मसला जो है ना इसका ये है कि आइडियोलॉजी जो है उसमें दमखम नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होती है। पाकिस्तान में देख लें कि आप जो है नवाज शरीफ सऊदी बेक्ड गवर्नमेंट है, तो अब यहाँ खिलाफत कैसे बनेगी और फिर नवाज शरीफ का अंजाम क्या होगा? अब ये जो है एक चीज है। फिर ये है कि सऊदी अरब है उसमें जो है जो बादशाहत है उसका अंजाम क्या होगा, जिस उसका जो है मैंने बताया था दाइश का, उसके जो खलीफा है अव्वल जो है अबू बकर बगदादी साहब जो है उसकी जो है मक्कतुल मुकरमा में जो है खाना काबा के सामने यानी कि बेग पस मंजर में खाना काबा है, लोग उमरा कर रहे हैं वहां पर उसकी जो है वो बादशाही ताज पहने हुए जो है फोटो भी आज रिलीज की है अल आलम टीवी की वेबसाइट पर, आप देख लें। तो ये जो है खिलाफत और ये जो इस किस्म की आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान में भी इन्होंने खिलाफत की या सहाबा की बात की और वहां हमने देखा कि शाम में हजरत उजर बिन उदी का जो है मकबरा शहीद कर दिया, बीबी जैनब सलामुल्लाह अलैहा के हरम पर हमला और वह अहले बैत के मतलब जो है इतनी मुकद्दस हस्ती है जो पूरे आलम इस्लाम के लिए काबिले एहतराम है। फिर आपने देखा कि जो है वो सामर्रा में इमाम हसन अस्करी उस पर हमला आवर हुए जो कि सारे आलम इस्लाम के लिए मतलब काबिले एहतराम एक मजार है, हरम मजार है, उस पर भी हमला आवर हुए। तो ये लोग ही नहीं है कि इस्लाम के नाम पर कुछ करें।
जी बहुत शुक्रिया चौधरी अशरफ साहब। अभी तहफ़ुज़ पाकिस्तान बिल की बात हो रही थी, एक तरफ तहफ़ुज़ पाकिस्तान बिल है और दूसरी तरफ जैसा कि अभी इरफान अली साहब फरमा रहे थे एक कि तालिबान को नाम लेकर उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की तरफ से पूरी तरह से फंडिंग है, असलाह जाती मदद है, फौजी हिमायत है। तो जब तक फंडिंग को असलाह जाती हमायत को गैर मुल्की हमायत और पुष्टपनाही को नहीं रोका जाएगा तो ये तहफ़ुज़ पाकिस्तान बिल कितना मौसर हो सकेगा?
देखिए ना बात यह है कि हमें दोनों फ्रंट जो है उन पे चुकन्ने रहना पड़ेगा। एक तो ये है कि हमें दहशत गर्दी का खात्मा करना है हमने, और दहशत गर्द जो है वो किसी का दोस्त नहीं है, और जो मर्जी वो क्लेम करे, मुतालबा करे या नारा बुलंद करे, लेकिन वो किसी उस खैर की तोको नहीं है। बाकी रही ये बात कि मुसलमानों में आपस के इख्तलाफात जो है उनको हवा न दी जाए, इसलिए कि इनमें इतिहाद की बात की जाए।
जी
हेलो
जी जी फरमाइए।
अगर इतिहाद की बात होगी तो यूनिटी की बात होगी, तो यूनिटी पे हम कंट्रोल कर लेंगे मुकम्मल तौर पे, हमारी यूनिटी कायम हो जाएगी तो अल्लाह के फजल से सारे मामला ठीक हो जाएंगे। और अंग्रेज की या अमेरिका की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो जैसे कर्नल लॉरेंस की हिस्ट्री आपके सामने है, ये मिडल ईस्ट में जो इख्तलाफ पैदा किए थे और मुसलमान कुव्वतों में जो दरारें डाली गई थी वो कर्नल लॉरेंस जैसी शख्सियात ने डाली थी। उन्होंने अरबी सीखी, फारसी सीखी और फिर वो इधर ईरान में भी आए और बाकी मुसलमानों के इलाकों में भी गए, सऊदीया में भी गए, मिडल ईस्ट में भी गए और उन्होंने इख्तलाफात को हवा दी। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि सब मुसलमान जो भाई हैं वो इकट्ठे होकर दहशतगर्दी का मुकाबला करें।
जी बहुत शुक्रिया आपका। रिजवी साहब लंदन चलता हूँ। रिजवी साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हुकूमत को जो धमकी दी है तालिबान ने, वो बात तो कहीं ना कहीं से समझ में आती है, अगरचे इलेक्शन के ज़माने में इनको एक तरह से खुला मैदान दिया था तालिबान ने नवाज शरीफ और उनकी जमात को इलेक्शन कम्पेन चलाने के लिए, लेकिन अब चूंकि हुकूमत वहाँ पर ऑपरेशन कर रही है और उसी ने ऑपरेशन का हुक्म दिया है तो जाहिर है कि तालिबान की तरफ से धमकी तो बात समझ में आती है। लेकिन ताहिरुल क़ादरी साहब जो ख़ुद हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत मुखालिफ एजेंडा लेकर पाकिस्तान में आए हैं तो जाहिर है कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है, तो तालिबान ने इनको क्यों धमकी दे दी?
देखिए अर्ज़ यह है कि ये दोस्तों आपने कहा कि ताहिरुल क़ादरी साहब अल्लामा ताहिरुल क़ादरी के इख्तलाफात जो हैं वो यहाँ राचे बयाँ बहुत हैं, वाज़ हैं शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से, और उसका नतीजा ये निकला उन पर ज़ुल्म सितम हुआ। लेकिन तालिबान की अदावत जो है ताहिरुल क़ादरी साहब से वो इस वजह से है कि ताहिरुल क़ादरी साहब उस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं या उन चंद उलमा में से एक हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ फतवा जारी किया तालिबान के ख़िलाफ़, और तालिबान को इन्होंने कहा कि ये वो इनके जो कार्रवाइयाँ हैं वो इस्लाम की रूह के भी मुनाफी हैं और इस्लाम के अकीदे के भी मुनाफी हैं और उनका इस्लाम से कतई तौर पर कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये अलग बात है, क्योंकि मैं खुद उस जगह मौजूद था जब उनकी किताब की रूनुमाई यहाँ वेस्ट मिनिस्टर की गरीबी हुई एक मरहले पर। तो अगरचे कोई लोग ये भी कहते हैं कि उसमें जो इस्तेमारी ताकतें थी उन्होंने भी कुछ हिस्सा डाला होगा, ये अलग एक बहस है, लेकिन ये हकीकत है कि ताहल कादरी साहब ने उनके खिलाफ फतवा दिया और ये साबित किया कि तालिबान जो है उनका ताल्लुक कतई तौर पर इस्लामी एजेंडे से नहीं है। ना वो इस्लामी निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, ना उनका प्रोपेगंडा जो है वो इस्लाम से कोई लगा खाता है, ना उनमें इखलास है। इस वजह से वो ताहल कादरी साहब के भी बहुत खिलाफ है। दरअसल बात यह है कि तालिबान हर उस आदमी के खिलाफ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जब इनकी अगर बस चलेगा तो आप देख लीजिएगा कि ये नवाज शरीफ को भी कबूल नहीं करेंगे, किसी और को भी कबूल नहीं करेंगे, किसी पाकिस्तान में इस्लाम की नाम लेने वालों किसी ऐसी जमात को भी कबूल नहीं करेंगे जो कतई तौर पर हतमी तौर पर कुल्ली तौर पर इनका साथ नहीं देगी। क्योंकि इनका मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि शख्सी वजाहत की बिना पर, ज़ाती बुलंदी की बिना पर, जो इनका अमीर हैं, जो इनके कर्ता धर्ता हैं, उनको अमीर मान लिया जाए और इनकी जो है हुकूमत और इनका तसल्लुत जो है वो तस्लीम कर लिया जाए। जो आदमी इस राह में आड़े आएगा इनके, ये उसको कभी भी कबूल नहीं करेंगे। और इसी वजह से वो धमकियां भी देते हैं, और इनकी धमकियां सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं हैं, हर उस आदमी के लिए हैं जो इनको कबूल नहीं करता। देखिए बाज़ वो लोग हैं, मैं मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ, पाकिस्तान में जो सिर्फ महज इल्मी तौर पर या तहकीकी तौर पर यह समझते हैं कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिन पर गौर व फिक्र होना चाहिए, खा वो मसलक के हों, अकीदे के हों, कुछ भी हों
जी।
लेकिन तालिबान का ताल्लुक जो है ना वो ठीक है, उनको बर्दाश्त किया जा सकता है। अगर सिर्फ ये इल्मी बहस होती तो इसका रुख कुछ और होता, अगर ये फिकही और मसलकी बिना पर कोई बहस होती तो इसका रुख और होता, ये मुनाजरों की सूरत इख्तियार करती, मुजाकरों की सूरत इख्तियार करती, इल्मी मबाहस की सूरत इख्तियार करती। लेकिन जुल्म व सितम तो ये हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि ये लोग जो हैं, इसी तरह बाकी मुल्कों में भी जहाँ इनकी ब्रांचें मौजूद हैं, कहीं भी हों, यमन में हों, शाम में हों, मिस्र में हों, सऊदीया में भी अगरचे ये कुछ लोग मौजूद हैं, तो ये जो हैं ये लोग जब से इन्होंने तशद्दुद का रास्ता अपनाया है, तलवार उठा ली है, बंदूक उठा ली है, तोपें उठा ली हैं, हर आदमी को कत्ल कर रहे हैं, उनके लिए ईसाई हों, यहूदी हों, और वो कलमा पढ़ने वाले लोग जो हों जो इनसे मुत्तफिक नहीं है, वो सारे के सारे बराबर हैं। तो ये हर एक को इनका अजदहा जो है, आप यकीन कीजिए कि अगर खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता इनको और मज़ीद पनपने का मौका मिल गया और इनका किसी जगह पर इलाकाई तौर पर या कहीं किसी हिस्से में, सूबे में, किसी इलाके में इनका तसल्लत हो गया, तो हर उस शख्स को ये कत्ल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, जब तक कि वो कुल्ली तौर पर इनकी इताअत को पूरी तौर पर इनका
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया,
गुलामी का जो फंदा कबूल नहीं करेगा उसको ये मार डालेंगे
जी। बहुत शुक्रिया आपका मंजूर रजी साहब। इरफान अली साहब, 3 मिनट का वक्त हमारे पास बचा है, मैं आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जाहिर है कि सबको धमकियाँ दे रहे हैं, हैरत की बात यह है कि उन्होंने इमरान खान साहब को भी धमकी दी है, जबकि अभी तातरीन जो बिल पास हुआ कौमी असम्बली में उनकी जमात ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया, तहफ़ पाकिस्तान बिल, तो ये जो इमरान खान साहब को तालिबान ने धमकी दी है ये बात कहाँ तक समझ में आने वाली है?
वो तालिबान का जो मतलब जो अगर आप उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मतलब वो आपको समझ में आ जाएगा कि वो किसी के भी दोस्त नहीं है, और एक लाइन है मतलब जब बहुत सारे मुल्क उनके पीछे फंडर हैं, उनकी फंडिंग करने वाले हैं, तो मतलब किस मुल्क की किस वक्त क्या पॉलिसी बनती है वो समझ में नहीं आ सकती। अब जैसे कि चौधरी अशर साहब ने इत्तेहाद की बात की थी, मैं उसी बात को लेके आपको बताता हूँ कि इत्तेहाद उम्मत ही इस मसले का हल जरूर है, लेकिन मसला ये है कि जो अमेरिका, बरतानिया, इसराइल की जो सहयूनी और साम्राज्य पॉलिसी है उसके अंदर जो मुल्क इत्तेहादी बने हुए हैं, मुसलमान अरब मुल्क बादशाह जो है, वो जब तक उस इत्तेहाद से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक सेंटकॉम का अड्डा कतर में रहेगा, जब तक जो है अमेरिका की जो है खुफिया जो इंटेलिजेंस है वो सऊदी अरब की सरजमीन पर या जो है प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद रहेगी, जब तक बहरेन में जो है 6th नेवल फ्लीट मौजूद रहेगा, तब तक जो है हम उनको कैसे मान लें कि वो इस्लाम की उम्मत के जो है मुखलिस दोस्त हो गए या जो है वो इत्तेहाद उम्मत के कायल हो गए। तो मैं ये बात कहूंगा कि मतलब हमें एक मंतिकी सोच अपनानी पड़ेगी, एक आदलाना सोच अपनानी पड़ेगी। बात हो रही है इमरान खान साहब के बारे में, तो इमरान खान साहब ही क्यों, आप ये देखें कि उन्होंने जमात इस्लामी को भी धमकी दी है। मतलब जो जिस दिन ये जो जो अखिल यूसुफ जई साहब जो हमारे तजिया निकाह रहे, उन्होंने ये बात ब्रेक की थी, और जो हमारे एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस पर एक जो है प्रोग्राम भी किया था, टॉक शो भी किया था, उसमें फिर जो है फरीद पुराचा साहब को भी बुलाया गया था जो जमात इस्लामी के। तो जिस दिन जो है इमरान खान साहब को धमकी दी तालिबान ने, उसी दिन जो है उन्होंने जमात इस्लामी को भी जो है धमकी दी है। और फिर वो धमकी ना भी दें तब भी जो आपको ये याद होना चाहिए, काजी हुसैन अहमद साहब भी एक बम धमाके में बाल बाल बच गए थे जो तालिबान ने किया था। बशीर बलोर साहब जो आवामी नेशनल पार्टी के हैं, वो शहीद हुए थे एक धमाके में। एक जो है वो आफ्ताब शेरपाओ पर भी जो है एक नाकाम हमले की कोशिश हुई है। और असफन यार वली साहब तो अपने गांव में रह ही नहीं सकते थे, वो जो है इस्लामाबाद जाके मुकीम हो गए थे, और बहुत अरसा उन्होंने जो है बाहर दूसरे मुल्क में जलावतनी में गुजारा, खुद साख्ता जलावतनी में, इसी वजह से। तो ये जो चीजें हैं इसको समझने की ये जरूरत है कि जो तालिबान का, जैसे कि रिजवी साहब भी कह रहे थे कि मतलब ये इसको आप कह ही नहीं सकते कि आज वो किसके उस पर हैं और कल किसके ऊपर मतलब जो है दोस्त हो जाएंगे। तो मतलब उसी में उस रो में ही कह रहा हूं कि ये सऊदी अरब पर भी हमलावर हो सकते हैं। इनके अंदर से बहुत से लोगों ने ऐसी कोशिश की भी है, और सऊदी अरब उनको पकड़ भी लेता है भर वक्त, और जो है उनको पकड़ के या कत्ल कर देता है, जो उनके वहां तो गर्दन उड़ाने का रवाज है, या जो है कैद में डाल देता है। लेकिन जो है हमने ये देखा है कि जो भी सऊदी या जो है उर्दन या जो है CIA की कैद में आया, अमरीकियों की कैद में आया या बर्तानिया की कैद में आया है, फिर वो वहां से जो उस कैद से निकला है वो जो है बहुत बड़ा दहशतगर्द साबित हुआ है। आप जो है अबू मुसब जरकावी को देख लें, ये बगदादी को देख लें, इससे पहले जो
वक्त हमारा ख़त्म हो चुका है। इरफान अली साहब माजर चाहते हैं आपसे। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, और यकीनी तौर पर जब तक जो असल मंबा है, जो असल जड़ है, जो असल पुश्त पर है, उस कुव्वत का जब तक मुकाबला नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक ये जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में या दीगर इलाक़ों में जो दहशतगर्द अनासिर फैले हुए हैं, इनका मुकाबला नहीं हो सकता। ज़ाहिर है ये तो किराए के एजेंट हैं, लेकिन असल जो सरचश्मा है दहशतगर्दी का, उसका पता लगा कर उसको तबाह करने की ज़रूरत है। तो यही मसला जो है पाकिस्तान में भी है और यही दीगर इलाक़ों में भी है। तो अरबाब अख्तियार को इस तरफ और इस नहत पर सोचने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए।